अनगार धर्मांग्र लेक्चर नंबर एक।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सौगसाऊनं।
प्रणम्य वीरं परमावबोधं आशाधरो विबोधनाय सोपन्यधर्मामृतधर्मशास्त्र पदानि किञ्चित् प्रकटीकरोति। आसे यहां अनगार धर्मामृत नामक शास्त्र का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। हमने सागर धर्मामृत पहले पढ़ा और इसको अभी पश्चात पढ़ रहे हैं। पंडित आशाधर जी की यह कृति है। अनगार कहने से ये मुनि संबंधी, जिसको कहेंगे हम आचरण संबंधी ग्रंथ है। पहले तो हमने श्रावकाचार देखा था, ये मुनि का आचार है। अब ये जो हमने मंगलाचरण है उसका अर्थ तो बाद में बताया है, उसके पहले जो श्लोक है उसको पढ़कर उसका अर्थ बताएंगे। पहले में पहले नास्तिकत्व परिहार शिष्टाचार प्रपालन पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नम शास्त्रादावाप्त संस्तवात्। इन्हें मंगलाचरण क्यों करते हैं इसके लिए बताते हैं। सभी धार्मिक ग्रंथों के शुरू में मंगलाचरण किया जाता है, उसको आदि मंगल कहते हैं। बीच में जहाँ परमेष्ठियों का आदि नमस्कार किया जाता है मध्य मंगल कहेंगे, अंत में फिर करते हैं तो अंत मंगल कहेंगे। तो ये क्यों किया जाता है तो यहाँ कहते हैं शास्त्र के प्रारंभ में आप्त का स्तवन करने से। आप्त का अर्थ मालूम है? अरिंद भगवान तीर्थंकर जिनके द्वारा हमें उपदेश मिला है उनको आप्त कहते हैं। अरिंद सिद्धों को नहीं कहते, वो है भगवान परंतु हाँ हितोपदेशी है उसको हम कहते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ के द्वारा जो हमें उपदेश मिला है उसके बिना मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए उनको आप्त कहते हैं। तो शास्त्र के प्रारंभ में, क्योंकि मूल कर्ता ही सर्वज्ञ देव भगवान है। शास्त्र के मूल कर्ता क्यों? क्योंकि जो दिव्य ध्वनि है, ओंकार ध्वनि है, उसको सुनकर गणधरों ने उसकी रचना की है। इसलिए आप्त का स्तवन करने से नास्तिकता का परिहार, परिहार यानी उसको रूल आउट करना, खंडन करना है, यानी जो ईश्वर को नहीं मानने वाले जो है, धर्म बिनु कुछ होता ही नहीं है, स्वर्ग मध्यम कुछ बातें होती नहीं है, तो कहते ये नास्तिकता का परिहार होता है। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का स्तवन कर रहे हैं तो उनका स्मरण कर रहे हैं, तो उनके गुणों को हम याद कर रहे हैं। शिष्टाचार का पालन, शिष्टाचार यानी पद्धति है कि ग्रंथ के शुरू में मंगल किया जाता है, मंगला यानी जिनके द्वारा हमें ये उपदेश मिला है उनका स्तवन और गुणानुवाद किया जाता है और निर्विघ्न पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि ग्रंथ की रचना शुरू की है तो वो निर्विघ्न रूप से पूर्णता को पहुंचे, इसलिए भी यहाँ मंगल किया जाता है। मन में ऐसा विचार कर ग्रंथकार अपनी इष्ट सिद्धि के लिए, ग्रंथकार की इष्ट सिद्धि क्या हो सकती है? घर में पैसा मिल जाए, लोग बहुत बड़ा मान ले, नहीं, ये निर्विघ्न समाप्ति हो जावे, उसके लिए क्रम से परम आराध्य, परम यानी सर्वोत्कृष्ट आराध्य, जिनकी आराधना करते हैं उसको आराध्य कहते हैं। सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, परमागम के कर्ता गणधर, व्याख्याता आचार्य और धर्म देशना का विनय पूर्वक आश्रय लेते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके स्तवन करते हैं। उनमें से सर्वप्रथम आत्मा में परमात्मा के प्रतिभास की कामना करते हैं हेतु इत्यादि, क्या कहते हैं, आत्मा में परमात्मा के प्रतिभास की कामना करते हैं। हम भी स्वभाव से परमात्मा जैसे हैं, तो हम स्वयं परमात्मा स्वरूप है ऐसी हम भावना करते हैं। इसलिए जो ऊपर मंगलाचरण किया था उन्होंने नमः सिद्धेभ्यः कहते हैं, प्रणम्य वीरम परमाव बोधम आशाधरो मुग्ध विबोधनाय, इन्हें यहाँ क्या क्या बताया था, पहले नमस्कार करते हैं, फिर ये क्यों शास्त्र की रचना की उसको निमित्त बताया जाता है, हेतु बताया जाता है, तो कहते हैं मुग्ध विबोधनाय, फिर स्वोपन्य धर्मामृत धर्म शास्त्र, उस शास्त्र का नाम भी बताया जाता है, पदानि किंचित प्रकटीकरोति, देखो इसका अर्थ नीचे लिखा है, हम वहां से पढ़ेंगे, जहाँ एक नंबर लिखा है ना, अंतरंग और बहिरंग कारणों के बल से सम्यक्त्व को प्राप्त करके, क्या कहा, कौन कौन से कारण, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, ये अंतरंग कौन से होते हैं और बहिरंग कौन से होते हैं, अंतरंग और बहिरंग, ये केवल यहाँ कारण में निमित्त उपादान भी तो ले सकते हैं, आपने निमित्तों में अंतरंग बहिरंग लगाया,
अच्छा।
नहीं वो भी लगा सकते हैं, परंतु सम्यक्त्व का तो सच्चा कारण तो उपादान कारण है, और उसमें भी वो पांचों समूह लगेंगे, इसलिए अंतरंग और बहिरंग कारणों के बल से सम्यक्त्व को प्राप्त करके, यानी वो केवल निमित्तों से नहीं, निमित्तों में अगर हमको दो बातें, दो प्रकार के निमित्त बताने हैं, उनमें भी अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त होता है। ये अंतरंग निमित्त क्या होता है, डेफिनेशन, नियम रूप निमित्त, चारों गतियों में कोई भी जीव सम्यक तो प्राप्त करके करेगा तो वहाँ नियम क्या है, तो दर्शन मुनि का उदय मिट जाता है, उसको हम उपशम कहेंगे, अनुदय कहेंगे, उसमें उपशम शोषम क्षय जो कुछ है ये तो नक्की होगा सबके लिए, तो उसको कहेंगे अंतरंग निमित्त, वो निमित्त है परद्रव्य। बहिरंग निमित्त में क्या है, जो मेरी भाषा में वेरिएबल निमित्त, नरक में तो वेदना के निमित्त से जीव सोचता है कि अरे ऐसा क्यों, क्यों मैं ऐसा, तो मैंने ऐसा सुना था मगर मैंने उसको गौर नहीं किया, गुरु का उपदेश सुना था परंतु मैंने उसको टाल दिया, इस तरह से वो सोचता है, तत्वों की बातें स्मरण में लेता है, अंतर्मुख परिणाम होते हैं, तो उसको सम्यक तो वहां पर भी हो सकता है। देवों में तो वैभव देखता है, अरे ये किसका फल क्या है, तो सोचता है वहां, वहां पर भी उपदेश देने वाले मिलते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों के समोषण में भी तो जाते हैं वे, जिनमें दर्शन ये भी है, और जो कल्याणक होते हैं, मत पूजा वगैरह होती है उसके निमित्त से भी होता है, और मनुष्यों में तो शास्त्र स्वाध्याय है, यानी परंतु यहाँ तो उपदेश सुनना, देशना जिसको कहेंगे, वो उसमें निमित्त है, परंतु सच्चा नहीं उपादान कारण क्या है, वो तो जीव में है अपने में, तो उसमें वो पुरुषार्थ होगा, काल लब्धि है, ओंकार है, वो सब उसमें आ जाएगा। हाँ, पांचों संभव है, पांचों में एक से तो निमित्त है, तो हाँ बाकी चार तो जीव में होते हैं, उपादान है, किसमें वही तो बताए, निमित्त में दो प्रकार लेना, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, तो अंतरंग और बहिरंग कारणों के बल से सम्यक्त्व को प्राप्त करके समस्त अंतरंग व बहिरंग परिग्रहों को त्याग कर, ये जब परिग्रह का त्याग करके, तब केवल बाह्य दृष्टि लगती के उसने सब वस्त्र का त्याग किया, घर छोड़ा, परंतु समस्त अंतरंग और बहिरंग, उसमें तो मिथ्यात्व और क्रोधादि सभी कषाय नोपषाय का त्याग करके बहिरंग परिग्रह को सब समस्त उपसर्ग और परिचयों को सहन करके शब्द आएगा, परंतु वहां वो दुख रूप वाली बात नहीं है, कल उसकी चर्चा हुई थी अपनी। निरंतर, निरंतर का अर्थ निर अंतर, अंतर बिना, यानी कंटिन्यूअस। स्वात्मोन्मुख संवित्ति रूप, स्वात्मो ने स्व आत्मा, निज आत्मा के सन्मुख, स्वात्मोन्मुख यानी सन्मुख। संवित्ति का अर्थ है मालूम है, ज्ञान। तो स्वात्मोन्मुख संवित्ति रूप शुद्ध ज्ञान में तत्पर होते हुए मन और इंद्रियों का नियमन करके, नियमन करना यानी कंट्रोल, यानी उसमें जाने वाले उपयोग है उसको समेट कर अपने में लगाते, तृष्णा रहित होकर। ये तृष्णा ने केवल वो बाहरी प्यास नहीं समझना, अन्य पर द्रव्यों की जो चाह है उसको यहाँ तृष्णा में लेना, अपने में अपने द्वारा अपनी निर्मल आत्मा का ध्यान करके, ये सब अपने में करना है, करने वाला भी हम स्वयं हैं। अपने में अपने द्वारा अपनी निर्मल आत्मा का ध्यान करके जो समस्त द्रव्य भाव कर्मों को निर्मूलन करते हैं, निर्मूलन मूल से उखाड़ देते हैं, नष्ट हो जाते हुए, और सुखरूप प्रमुख गुणों से सर्वदा शोभित होते हैं, क्योंकि गुणों की पूरी जो अनंत शक्ति है वो प्रकट हुई है, वे सिद्ध परमेष्ठी मेरी आत्मा में भासमान हो, स्व संवेदन के द्वारा सुस्पष्ट हो। ये भगवान का निर्णय कब किया, तो स्व संवेदन हुआ तो अपना भी हुआ और भगवान का भी निर्णय हुआ, क्योंकि जैसा सर्वज्ञ भगवान का प्रकट स्वरूप है वैसा है मैं स्वभाव अपेक्षा। अपने आत्मा में सिद्ध भगवान भासमान हो अर्थात समय दर्शन प्रकट हो जाए। कौन सा
नंबर एक तो ये पूरा ये।
अच्छा अच्छा, मैं मुझे ऊपर का लगा। हाँ हाँ हाँ, ये गाथा तो मैंने पढ़ी नहीं, अभी पढ़ूंगी, फिर विशेषार्थ पढ़ेंगे। अच्छा, ऊपर के इसका उसने किया ही नहीं है, एक नंबर के श्लोक का अर्थ ही नहीं किया उन्होंने, तो मैं तो बताया ना उसको। वीर भगवान को नमस्कार करके परम अवधो अवबोधम, परम उत्कृष्ट अवबोधन ज्ञान किसको कराना है, मुग्ध विबोधनाय, मुग्ध जीवों को पढ़ाने के लिए उनको इसको विबोधन करना है, उनको ज्ञान में आ जावे इस तरह से, इसलिए यहाँ ग्रंथों की रचना की थी। स्वोपज्ञ धर्मांत, इसका स्वोपज्ञ टीका इसका नाम है, उन्होंने स्वयं इसकी संस्कृत टीका लिखी, ग्रंथ तो लिखा ही लिखा है, उसकी टीका भी स्वयं, और उसका नाम है स्वोपज्ञ टीका। धर्मामृत ये तो सागर धर्मामृत, अनगार धर्मामृत के नाम है। ये जो धर्मशास्त्र रूप जो पद है वो किंचित प्रकटीकरोति, वो यहाँ लिखते हैं। ये तो उन्होंने मंगलाचरण किया था। अब जो नीचे एक नंबर का जो श्लोक है, यहाँ से ग्रंथ की शुरुआत होती है। ऊपर तो उन्होंने स्वयं मेरे ख्याल से वो टीका का एक नंबर होना चाहिए था। ठीक है, हम पढ़ेंगे। हेतु द्वैत बलादुदीर्ण सदृश सर्वसह सर्वश त्यक्त्वा संगमजस्र सुश्रुत परा संयम्य साक्षम मन ध्यात्वा स्वेशमिन स्वयं स्वममलम निर्मूल्य कर्माखिलम ये शर्म प्रगुणश्च का सति गुणे ते भान्तु सीधामयि। ये ग्रंथ के पहला श्लोक है। एक्चुअली हमने उसका अर्थ पढ़ लिया है, अब उसका विशेषार्थ। यद्यपि अंतरंग व बहिरंग कारणों के बल से यह पद सम्यक दर्शन के साथ प्रयुक्त किया गया है, प्रयुक्त किया ने जोड़ा है उसके साथ लगाया है, किंतु यह पद आदि दीपक है और इसलिए आगे के समस्त परिग्रह का त्याग, निरंतर सम्यक श्रुत में तत्परता, इंद्रिय और मन का नियमन, शुद्धात्मा का ध्यान और समस्त कर्मों का निर्मूलन, इनके साथ भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि समस्त कार्य अंतरंग और बहिरंग कारणों से ही उत्पन्न होते हैं। इसको हम यहां उन्होंने क्या लिया है, उनमें से सम्यक्त्व के अंतरंग कारण निकट भव्यता आदि है। यही वो जो पांच समवाय में से चार समवाय लिए उन्होंने, और बाह्य कारण उपदेशक आदि है। निकट भव्यता जिसको हम काल लब्धि भी कहेंगे, काल लब्धि को पाकर ऐसा कहीं कहीं आता है, परंतु काल लब्धि आई इसलिए हुआ, बिना पुरुषार्थ ये हो ना, काल लब्धि आने पर पुरुषार्थ के द्वारा ही होगा और तत् समय की पर्याय की योग्यता से होगा, और वो स्वभाव में है तो प्रकट हुआ। हाँ ना, निमित्त भी है और वो भी नक्की है। क्या कहा, जिसको समय तो जिस समय में होना है उस समय का उसका निमित्त नक्की है कि चाहे जैसा निमित्त चलेगा ना। हम तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट निमित्त चाहते हैं। वो मारी जी का क्या हुआ मालूम है, स्टोरी पढ़ी कि मालूम, कहीं सुनी नहीं कभी, महावीर का जी भरत चक्रवर्ती का पुत्र था, यानी आदिनाथ का ऋषभदेव का पोता था, तो भगवान तो उसके पिताजी के पिताजी होते, तो साक्षात और पहले तीर्थंकर, कितना उत्कृष्ट निमित्त तो होना चाहिए। हम तो यहाँ से बैठे बैठे वो महाविदेव में जाना चाहते, तो तीर्थंकर का उपदेश सुनकर तो वहां तो उनका तो उल्टा हो गया। हाँ, पाखंड मत की स्थापना कर दी उन्होंने जाके, तो उनके कारण हुआ ना। तो और जब उनका सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता हुई तो सिंह के पर्याय में थे, और चारण रिद्धि ने चारण रिद्धिधारी मुनि आकर उन्होंने उपदेश दिया उनको, तो वो कैसे कभी आएंगे क्या करेंगे, आकाश की तरफ देखते बैठते हो गए ना। यहाँ क्या कहते देखो, यानी ये जो सभी कार्य बताए ना, ये परिग्रह का त्याग करना, सम्यक श्रुत में तत्परता, इंद्रिय मन का नियम, सिद्धात्मा का नियम, सभी में ये सब अंतरंग बहिरंग कारण लगेगा। वो एक बार बता दिया, सम्यक के लिए उन्होंने बताया अंतरंग और बहिरंग कारणों के बल से, तो हर पर्याय में ये तो लगेंगे, सब निमित्त और उपादान हर पर्याय में लगते हैं, इसलिए वो उसको आदिदीपक का, आदिदीपक का अर्थ समझते है, देखो आदि दीपक का अर्थ हम समझते हैं, बहुत लंबा ऐसा वरांडा है या कोई हॉल है बहुत बड़ा, तो हम हॉल में अंदर प्रवेश किया और हमने पहले वाला लाइट लगा दिया। पहले के जमाने वो दीपक रखते थे नीचे, हम कहेंगे ट्यूबलाइट लगाएंगे जलाएंगे, बहुत सारी थी तो हमने पहली जलाई, तो उसका प्रकाश कहाँ तक फैलेगा, पूरे हॉल में जलाएंगे, और मध्य वाला कोई लाइट लगाए उसका भी पूरे हॉल में, और लास्ट वाले ट्यूबलाइट लगाए तो भी पूरे हॉल में उसका प्रकाश आएगा। तो जो आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक कहीं भी रखो, एप्लीकेबल टू ऑल, उसका ये दीपक, दीपक जैसा प्रकाशित करता है वैसे ये जो कोई शब्द है उसको हमने एक बार वहां डाला है, शुरुआत में रखा वो सबके लिए, कभी कभी अंत में भी रखते हैं। आपको कोई ऐसा उदाहरण मालूम है, बोलो मिलवे, अंत्य दीपक। हाँ, रोज तो बोलते हैं। लोए सोव नमो, तो हम हर बात नमो, तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वो नमो तो बोल रहे हैं, नमो आगे क्या लिखा, लोए सौव साहु, लोक के सभी साधुओं को, तो केवल लोक के सभी साधुओं को ही नमस्कार करना, कि लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार, सभी अनंतों को, ये सबके लिए ये लगा लेना, ये क्या हुआ, अंत दीपक हुआ। तो शुरुआत में रखे या लास्ट में, एप्लीकेबल टू, यानी वो पद जो है वो एक बार वहां हमने डाला है तो सर्वत्र उसको समझ लेना चाहिए। तो कहते समस्त कार्य अंतरंग और बहिरंग कारणों से ही उत्पन्न होते ही लगा, उनमें से सम्यक्त्व के अंतरंग कारण निकट भव्यता आदि है और बाह्य कारण उपदेशक आदि है। आदि में हमने देखा जिनविंब दर्शन है ना, वेदना है, पंचकल्याण है, जाति स्मरण है, बहुत सारी बातें, परंतु उसमें भी उपदेश को मुख्य क्यों लिया है? वो जाति स्मरण हो या जिनविंब दर्शन हो, पहले जिसने कभी उपदेश सुना है, तत्व सीखे है, उसी को उस जिनविंब दर्शन से कुछ अवबोध होगा, कुछ ज्ञान होगा, कुछ तत्वों की अंदर भावभाषण होगा, तभी तो उपयोग अंतर्मुख चला जाएगा उसका। कहा भी है निकट भव्यता सम्यक्त्व के प्रतिबंधक मिथ्यात्व आदि कर्मों का यथा योग्य उपशम क्षय या क्षोपम, यानी तीन में से कोई भी एक कंडीशन हुआ उसका कर्मों की अवस्था होगी, उपदेश आदि को ग्रहण कर सकने की योग्यता, यानी संगीपना जो हम कहेंगे, उपदेश को ग्रहण करने की योग्यता, यानी समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, संगीतव यानी संगी पंचेंद्रियों के ही होगा, और परिणामों की शुद्धता, ये सम्यक दर्शन के अंतरंग कारण है। और उपदेशक आदि बाह्य कारण है, यह उन्होंने अलग पद्धति से उसकी चर्चा की है। अंतरंग कारण में अंतरंग निमित्त भी ले लिया उन्होंने, और बाकी क्षोभम लब्धि विशुद्धि लब्धि आदि उसको ले लिया। इसी तरह परिग्रह त्याग आदि के भी अंतरंग और बहिरंग कारण जानने चाहिए। अंतरंग में उनके वैराग्य की उत्पत्ति हुई है, बहिरंग में कोई ऐसा निमित्त बन जाता है कि उनके विचार करने पर पड़ो। हम देखते हैं ना, किसी ने वो आकाश के मेघ देखे, या किसी ने वो तारा टूटता हुआ देखा, किसी ने सफेद बाल देखा, हम तो कुछ नहीं होता है कितने बार तो जिसके अंतरंग में वो समय आया है तो उसके कुछ भी बाह्य निमित्त से उनकी उस पर वो विचार चले जाते हैं। सम्यक दर्शन में आगत दर्शन शब्द दृश्य धातु से निष्पन्न हुआ है, यानी सम्यक दर्शन ये जो शब्द है उसमें जो दर्शन शब्द है आगत यानी वहां आया हुआ, दृश्य धातु से, धातु समझते हैं, क्रियापद जिसको कहेंगे हम संस्कृत में उसको धातु कहते हैं। यद्यपि दृश्य धातु का प्रसिद्ध अर्थ देखना है, एक ही धातु कहो एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो उसका प्रसिद्ध अर्थ है ने मुख्य अर्थ जो हम जिसको कहेंगे लौकिक में दृश्य ने देखना है, किंतु यहाँ श्रद्धान अर्थ लिया गया है, क्योंकि सम्यक दर्शन में हम यथार्थ श्रद्धा ने संस्कार, क्योंकि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। कहा भी है विद्वानों ने निपात उपसर्ग और धातु को अनेक अर्थ वाला माना है, नीचे लिखा है निपातोश्चोपसर्गाश्च धातवश्चेति ते त्रय अनेकार्था स्मृता सद्भि पाठस्ते शाम निदर्शनम। देखो उपसर्ग ने जैसे शांत और प्रशांत प्र शब्द लगाए ना, उसको हम कहेंगे उपसर्ग। वैसे निपात में भी एक्चुअल निपात का उदाहरण मैं कह दूं अभी मुझे याद नहीं आ रहा, यानी वो तो शब्दों को ही जोड़कर जो कोई हो जाते हैं ना, तो उनके जो एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता, ये इतना ही ख्याल लेना। निपात मुझे पता नहीं निपात का अर्थ एक्चुअली, कहा जा सकता है कि प्रसिद्ध अर्थ का त्याग क्यों किया है? तो दर्शन में देखना शब्द प्रसिद्ध अर्थ है, तो उसको छोड़कर श्रद्धा क्यों लिया, दर्शन शब्द क्यों लगाया वहां पर? उसका उत्तर है कि सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, अतः तत्वात् का श्रद्धान आत्मा का परिणाम है। वह मोक्ष का कारण हो सकता है क्योंकि वह भव्य जीवों के ही संभव है, किंतु देखना तो आंखों का काम है और आंखें तो चौइंद्रिय से लेकर सभी संसारी जीवों के होती है। एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय के आंखें नहीं होती, चक्षुइंद्रिय उनके नहीं होता, चतुरेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय उनके होते, अतः उसे मोक्ष का मार्ग नहीं कहा जा सकता। इसको यानी वो देखना वगैरह इसमें नहीं लेना है, सम्यक दर्शन यानी वो श्रद्धा के अर्थ में ही उसको प्रयुक्त किया। सम्यक दर्शन में जो सम्यक शब्द है उसका अर्थ प्रशंसा आदि है। तत्वार सूत्रकार ने भी सम्यक दर्शन का लक्षण इसी प्रकार कहा है, तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म का उपशमादि होने पर, हमने ऊपर देखा था उपशम क्षय क्षोपशम, उसको उपशमादि आदि लगाने से तीनों इंप्रूव हो गए। आत्मा में जो शक्ति विशेष प्रकट होती है जिसके होने से ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाता है, उस तत्वार श्रद्धान रूप परिणति को दर्शन कहते हैं। क्या क्या कहा देखो, हमने तो तत्वार सूत्र में पढ़ा है तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्वार कितने हैं, तत्व कितने हैं? सात तत्व है ना, कौन कौन से याद है कि भूल गए? हाँ बोलो बोलो। मोक्ष, अरे क्या तत्व शब्द लगा लेना, ये क्या है? सात तत्व, और उनका सही श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान जो का त्यों श्रद्धान उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और यहाँ निमित्त रूप से सामने क्या है, मिथ्यात्व का उदय था इतने दिन अनादि से, अभी जब तत्व विचार करता है आत्म सम्मुख दृष्टि करता है तो वो उपशमित हो जाता है, कर्म उदय में नहीं आता, वहां कर्मों का भी उदय नहीं और यहाँ जीव के भी सम्यक तो परिणाम चल रहा है। नहीं तो अभी तक अनादि से क्या होता था, यहाँ हर समय पुराने का उदय चल रहा था और जो नया मिथ्यात्व कर रहा था और नया मिथ्यात्व का बंद भी हो रहा था, तो बांधा हुआ तो उदय में आने से रहा, तो उसको कौन रोकेगा? तो कहते हैं जीव स्वयं अपनी आत्मदृष्टि करता है, तत्व विचार करता है, तो मिथ्यात्व भी उदय में आने वाला मंद मंद होते होते अंतर्मुहूर्त तक उसका उदय ही रुक जाता है, वो अपने आप हो जाता है, उसको कहेंगे कर्म का उपशम हुआ, तब यहाँ जीव के उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब बाकी कर्मों की थ्योरी अभी हम गौण करेंगे, यहाँ पर क्षोपशम में क्या होता है, क्षय में क्या होता है, तो यहाँ कहते उसको औपशमिक सम्यक दर्शन कहेंगे। तो उसके कारण क्या होता है, ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाता है। अब तक तो उसका ज्ञान था, अपन कैसा था, शास्त्र का ज्ञान था, आत्मा को जाना नहीं था, स्व संवेदन ज्ञान नहीं था, शास्त्र से उसने नक्की तो किया था कि आत्मा कैसा है, परंतु उसको हम आत्मज्ञान या सम्यक ज्ञान तब तक नहीं कह सकते, भले सही आगम के अनुसार सही ज्ञान होने पर भी जब तक आत्मा का अनुभव नहीं किया है तब तक उसको हम सम्यक ज्ञान नहीं कहे। तो ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही समय में हो जाता है। उस तत्वार श्रद्धान रूप परिणति को दर्शन कहते हैं। आगम में मुमुक्षुओं के लिए सहन करने योग्य परिशों और उपसर्गों का कथन किया है, उन्हें जो धैर्य आदि भावना विशेष के सहाय से सहन करते हैं, अर्थात अपने अपने निमित्तों के मिलने पर आए हुए परिशों और उपसर्गों से महासात्विक और वज्रकाय होने के कारण अभिभूत नहीं होते, यानी उसके दोलायमान नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते, तथा समस्त बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह को छोड़ देते हैं, चेष्टा और उपयोग रूप वृत्ति के द्वारा, ये चेष्टा यानी वो मराठी वाली चेष्टा नहीं, मराठी में तो वो तो जिसको कहते हैं व्यंग करना उसको कहते चेष्टा करना, वो नहीं चेष्टा नहीं प्रयत्न चेष्टा करते तो प्रयत्न
नहीं
मराठी में चेष्टा किसी की चेष्टा जिसको हम टिंगल कहते हैं वो चेष्टा होती है
ऐसा हाथ किया वो उसको भी
उसको चेष्टा
जेस्चर कहते
जेस्चर अलग बात है जेस्चर तो उस एक्शन हुई उसकी गुजराती में चेष्टा हावभाव को कहते हैं
अच्छा
नहीं मगर यहाँ चेष्टा नहीं प्रयत्न
चेष्टा
चेष्टा और उपयोग रूप वृत्ति वृत्ति है ना यहाँ पर वृत्ति को लिया उसके द्वारा ममकार और अहंकार ममकार यानी मम यानी यह मेरा है वो ममकार और अहंकार यानी यह मैं हूँ ये अहंकार ममकार और अहंकार से यानी मैं और मेरा से जीव उसमें आसक्त होता है इसलिए परिग्रह को संग कहते हैं क्या कहते हैं किसमें आसंग होता है आसक्त होता है परिग्रह में बाह्य वस्तुओं में तो परिग्रह को ही संग कहा ये नाम कहीं सुना है
निसंग
बोलो नलिन भाई संग शब्द परिग्रह के लिए कहाँ सुना है विविध संग बिना मुनि शुद्ध उपयोगी चढ़ाला में है ना विविध संग अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के लिए संग शब्द आया है तो संग क्यों कहा कि उसमें जीव पर पदार्थों में ये मेरे है या मैं हूं ऐसा आसक्त हो जाता है इसे उसको संग कहा वही परिग्रह सर्वशः शब्द में प्रयुक्त प्रशंसार्थक शस प्रत्यय से त्याग की उत्तमता प्रकट होती है यही इसमें है ना सर्वशः स्त्यक्त्वा सर्वशः सर्वशः स्त्यक्त्वा हम सर्वशः ने समस्त प्रकार से ऐसा कहते हैं उसका क्योंकि सभी मुक्तिवादी मतों में समस्त परिग्रह के त्याग को मुक्ति का अंग अवश्य माना है उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती इस उक्त कथन से संक्षेप रुचि शिष्यों की अपेक्षा यहां ग्रंथकार ने सम्यक आराधना और चारित्र आराधना को सूचित किया क्या कहा दो प्रकार के शिष्य होते हैं एक होते हैं संक्षेप रुचि और एक होते हैं विस्तार रुचि इन शॉर्ट बता देने से वो सब उसमें से उसका विस्तार जान लेते हैं उसको कहेंगे संक्षेप रुचि और अभी इसी को विस्तार से समझाएंगे शिष्यों को समझने के लिए या कोई समझने में कठिनता होती तो उनको हर एक का खोल खोल कर अर्थ बताया जाता है तो उसको कहेंगे विस्तार रुचि तो यहाँ एक ही श्लोक में उन्होंने सम्यक आराधना और चारित्र आराधना की बात पहले में पहले सम्यक तो प्राप्त कर अंतरंग और बहिरंग हो तो सबके लिए लिया सम्यक तो प्राप्त करके फिर समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह को त्याग कर समस्त उपसर्ग परिश्रम को सहन करके ये इंद्रिय मन का दमन करके ये सब उसमें आ जाएगी दर्शन आराधना और चारित्र आराधना सम्यक ज्ञान का सम्यक दर्शन के साथ और तप का चारित्र के साथ अविनाभाव होने से अविनाभाव क्या होता है हाँ एक है तो वहाँ होगा ही होगा तो सम्यक ज्ञान का सम्यक दर्शन के साथ अविनाभाव है यहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ सम्यक ज्ञान है ही और तप का चारित्र यानी चारित्र है तो वहाँ तप भी है यहाँ चारित्र कहने से केवल सम्यक चारित्र नहीं लेना वो मुनि योग्य चारित्र को यहाँ चारित्र नाम देंगे सम्यक चारित्र तो चौथी से शुरू हो जाता है परंतु जहाँ उसकी प्रचुरता है अधिकता है वहाँ उसको चारित्र कह दिया जाता है इससे उन दोनों में दोनों का अंतर्भाव हो जाता है सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र को धारण करने के पश्चात साधु को निरंतर सम्यक श्रुत ज्ञान में तत्पर रहना चाहिए। नहीं तो अभी तो क्या मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं। क्या कहा? निरंतर सम्यक श्रुत ज्ञान में तत्पर रहना चाहिए। अस्पष्ट ऊहापोह को श्रुत ज्ञान कहते हैं। निरंतर सम्यक श्रुत ज्ञान है, वो सम्यक श्रुत ज्ञान में तो अनुभूति की मुख्यता है, तो निरंतर आत्मा में और बाह्य में भी श्रुत ज्ञान करेगा, उसको भी सम्यक श्रुत ज्ञान ही कहेंगे। केवल शुद्धोपयोग की बात नहीं है, शास्त्र ज्ञान भी और बारंबार स्वात्मुख, यानी शास्त्र स्वाध्याय, तो जब जब वो अंतरंग में स्थिर नहीं हो पाते तो बाहर में वो तो शास्त्र स्वाध्याय आदि करेंगे, उस संबंधी विचार चलेंगे उनके, और उसमें भी शुद्धोपयोग होगा। जैसे छठा सातवा उनका तो मुनि जीवन ही है, ऐसा है छठा सातवा छठा सातवा। अस्पष्ट ऊहापोह को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जब वह श्रुत ज्ञान स्वात्मोन्मुख होता है, आत्मस्वरूप के चिंतन और मनन में व्यापृत होता है, तो वह सम्यक श्रुत कहा जाता है। क्या कहा? अकेले श्रुत ज्ञान अलग, और सम्यक श्रुत ज्ञान कब होगा? जब आत्मा का अनुभव होगा, बारंबार उसका अवलंबन होगा, तब। केवल श्रुत ज्ञान अस्पष्ट ऊहापोह नहीं चर्चा उसके, ऊहापोह यानी उसके विधि, यानी दोनों एंगल से, सभी एंगल से उसका विचार करना, उसको ऊहापोह कहते हैं। यानी हमने शास्त्र पढ़े, ये नए से ऐसा होता है, वो नए से ऐसा होता है, इतने होते उसमें अंत, ये सब हमने बहुत चर्चा की उसकी, परंतु वो सब क्या कहेंगे? वो चर्चा हुई केवल, आत्मसन्मुख होकर आत्मा को जानेंगे, आत्मा के आनंद अतीन्द्र आनंद का अनुभव लेंगे, तब उसका नाम सम्यक श्रुत ज्ञान होगा। मतिशुद्ध ज्ञान में तो आत्मा का वो जानना हो जाता है, इसलिए अस्पष्ट ऊहापोह को श्रुत ज्ञान कहा। और जब वह श्रुत ज्ञान कौन सा? ये शास्त्र के द्वारा जो हमने आगम के द्वारा जाना है, वह जब स्वात्मोन्मुख होता है, आत्मस्वरूप के चिंतन मनन में व्यापृत यानी उसी में लगा रहता है, तो वह सम्यक श्रुत कहा जाता है। केवल विकल्प कर रहा है ऐसा नहीं कहा, विकल्प भी वो केवल श्रुत ज्ञान है, परंतु विकल्प जिस संबंध में चल रहे थे, उस आत्मा को डायरेक्ट विषय बनाएंगे अपने ज्ञान का, तो वहां उसका अनुभव होगा, तो उसको हम कहेंगे सम्यक श्रुत ज्ञान। श्रुत शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना। श्रोत्रेंद्रिय ऐसा भी शब्द सुना है ना, सुश्राव्य श्रोता। किंतु जैसे दर्शन में दृश्य धातु का अर्थ देखना अर्थ छोड़कर श्रद्धान अर्थ लिया गया है, उसी प्रकार श्रुत से श्रुत यानी सुना हुआ, परंतु यहाँ क्या लेना? ज्ञान विशेष लिया गया है। ज्ञान विशेष का अर्थ क्या होता है? पर्टिकुलर ज्ञान। क्यों? ज्ञान तो पांच प्रकार के होते, मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान, तो उसमें से विशिष्ट ज्ञान जिसको ज्ञान विशेष कहेंगे, पर्याय की अपेक्षा खास एक विशिष्ट, वो उसका नाम है श्रुत ज्ञान। अर्थात अब यहाँ निमित्त की ओर से कथन कर रहे हैं, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का क्षोभम होने पर जिस आत्मा में श्रुत ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई है। देखो ये कथन निमित्त की ओर से है। क्या कहा? श्रुत ज्ञान आवरण के आवरण से, उसके क्षोभम से, क्षोभम उन्होंने कुछ प्रकट है कुछ अप्रकट है, उसको क्षोभम कहेंगे। कर्मों में क्या अवस्था हो रही है? क्षोभम हो रहा है। और यहाँ जीव में क्या हो रहा है? वो जो हम कहेंगे क्षोभम ज्ञान, उसके ज्ञान को भी नाम देंगे क्षोभम ज्ञान। किस ओर से? वो कर्मों की अवस्था की ओर से हम कहेंगे ये क्षोभम ज्ञान। तो वहां कर्मों का क्षोभम हुआ, इसलिए जीव को क्षोभम ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अभी बारिश के दिन है तो क्या हो? मेघ आ गए, और धुंधला धुंधला प्रकाश दिख रहा है। वो धुंधला धुंधला प्रकाश मेघ के कारण है ना, तो किसी के सूर्य प्रकाश है, वो सूर्य का है, प्रकाश मेघ से नहीं उत्पन्न हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता वहां मंद पड़ गई, उसमें हम निमित्त रूप से लेंगे उसको, परंतु प्रकाश मेघ ने उत्पन्न नहीं किया। धुंधला भी है, वो प्रकाश जो है वो सूर्य का है। ऐसे यहाँ हम निमित्त की तरफ से बताना है तो हमारा क्षोभसम ज्ञान चल रहा है। हमें कैपेसिटी कितनी है, स्वभाव क्या है, केवल ज्ञान है, सर्वज्ञत्व शक्ति हमारे में, परंतु अभी क्या है, कर्म का आवरण है, तो हम कहेंगे वो मंद पड़ गया, क्षोभसम ज्ञान कहेंगे उसको। ये कौन से कर्म है, तो कहते श्रुत ज्ञान आवरण और वीर्यांतराय। हमेशा ज्ञानावरण के साथ वीर्यांतराय को लगाते ही है। जिस आत्मा में श्रुत ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई और साक्षात या परंपरा से मति ज्ञान पूर्वक होने से उसमें अतिशय आ गया। अभी इसका अर्थ समझेंगे। पहले में पहले मति ज्ञान क्या होता है और श्रुत ज्ञान क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। कौन बताना चाहता है, मिली भाई आप बताएंगे, मति ज्ञान किसको कहना और श्रुत ज्ञान किसको? हाँ, सामान्य रूप से
सामान्य सामान्य ज्ञान।
अच्छा, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो। हाँ, और किसी को बताने आप? हाँ, इंद्रिया यानी पांचों इंद्रिया और मन जिसमें निमित्त है वो मति ज्ञान। यह हम आत्मा संबंधी ज्ञान की बात नहीं कर रहे। मति ज्ञान की डेफिनेशन क्या है, इंद्रिया और मन। अभी एक इंद्रिय जीव है, उसको एक स्पर्शन इंद्रिया के द्वारा ही ज्ञान होता है, वो दर्शन होता है। सामान्य प्रतिभास का अर्थ है विदाउट डिफरेंशिएटिंग, बस सत्ता मात्र का ग्रहण होना है, उसमें ये अलग है वो अलग है वो भी नहीं, उसको हम दर्शन कहेंगे। दर्शन उपयोग, ज्ञान दर्शन वाला दर्शन में से वो दर्शन उपयोग है, वो समय दर्शन वाला दर्शन नहीं, वो भी देखना नहीं, आंखों से देखना नहीं। ज्ञान होने से पहले पदार्थ की सत्ता का जो प्रतिभास कहो, अवलोकन कहो, जो कुछ है ग्रहण कहो, वो होता है तो उसको दर्शन कहते हैं। और दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग ज्ञान है ना, वो तो ज्ञान जानने में आया कि ये अलग है ये अलग है, इसको हमने पट्टी कहा ये और ये क्लिप कहा ये पुस्तक कहा, तो हमने उसको जान लिया, हमने डिफरेंस कर दिया, उसके उसके विशेषताओं को जान लिया। ये इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा जानना होता है, उसको कहेंगे मति ज्ञान। और श्रुत ज्ञान किसको कहेंगे, इंद्रियों और मन के द्वारा जो पदार्थ जाना है उसके द्वारा अन्य पदार्थ का ज्ञान। जैसे मैंने कहा शक्कर किस इंद्रिय के द्वारा जाना, मैंने शक्कर कहा, आपने कर्ण इंद्रिय के द्वारा शब्द को जाना, शब्द को जाना, परंतु वो शब्द के द्वारा हमने वो शक्कर नाम के पदार्थ को रिलेट किया उसको, तो उस पदार्थ का ज्ञान हुआ। शक्कर है मीठी, अरे मुझे लाना थे घर में कलास हो गई। अब यहाँ दो शब्द आए, देखो कहाँ भी है, नहीं नहीं ऊपर ऊपर ऊपर, साक्षात या परंपरा से, हम अभी आगे नहीं गए। साक्षात या परंपरा से मति ज्ञान पूर्वक होने से, साक्षात मति ज्ञान ने हमने शक्कर कहा और आपको शक्कर पदार्थ का ज्ञान हुआ, आपने श्रोत्रेंद्र के शब्द को जाना और शब्द के द्वारा उस शक्कर नाम के पदार्थ को भी जाना, उस पर अपने ज्ञान उस पर चला गया, ज्ञान में वो पदार्थ आया, हमने कहा ये श्रुत ज्ञान हुआ, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हुआ। ये हमने अक्षर पढ़ा, यहाँ लिखा था आत्मा को या दूसरा कुछ भी जो हमारी मालूमात हुई, कोई अन्य भी चीज, पेन लिखा था तो हमने पढ़ा और हमें वो पेन नाम पदार्थ का ज्ञान हुआ, तो ये क्या कहेंगे हम, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान, ये तो साक्षात हुआ। परंपरा का अर्थ क्या होता है, परंपरा ने अभी हमने शक्कर कहा, आपको शक्कर पदार्थ का ज्ञान हुआ, फिर उसके वो विचारों की परंपरा चली और अरे मेरे वो तो शक्कर खलास हुए, अभी शक्कर का क्या भाव चल रहा है, वो यानी वो तो शुद्ध ज्ञान की होते और चल रहे उसको परंपरा, यानी पहले शुरुआत में मति ज्ञान हुआ था, फिर शुद्ध ज्ञान, फिर शुद्ध ज्ञान, फिर शुद्ध ज्ञान, ऐसे शुद्ध ज्ञान ही चल रहा, तो उसको कहने परंपरा। तो इसलिए कहते साक्षात या परंपरा से मति ज्ञान पूर्वक होने से उसमें अतिशय आ गया, उस आत्मा की अस्पष्ट रूप से नाना अर्थों के प्ररूपण में समर्थ जो ज्ञान विशेष रूप परिणति है उसे शुद्ध ज्ञान कहते। ये इसमें बहुत ऐसा उसको कॉम्प्लिकेटेड है डेफिनेशन उसकी। अब कहा भी है मति ज्ञान पूर्वक शब्द योजना सहित जो उहापह होता है वह शुद्ध ज्ञान है। अभी शब्द योजना ही नहीं, वो सब वाचक जो शब्द है, शब्दों के द्वारा कुछ अन्य अर्थों को समझाया गया है उसको हम यहाँ श्रुति ज्ञान है। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है, और मति ज्ञान पूर्वक जो विशेष ज्ञान होता है वह श्रुति ज्ञान है। अब ये सरल हुआ, मति ज्ञान होते ही जो श्रुति ज्ञान होता है वह साक्षात मति ज्ञान पूर्वक है, और शुद्ध ज्ञान के बाद जो शुद्ध ज्ञान होता है वो परंपरा मति ज्ञान पूर्वक है। वो मैंने यही कहा, यानी कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, यानी पहले शुरुआत में मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हुआ, वो शुद्ध ज्ञान पूर्वक अन्य शुद्ध ज्ञान, उस पूर्वक अन्य शुद्ध ज्ञान, ये हमारे वो तो एक पदार्थ के द्वारा अन्य 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 उसको हम जाते हैं जानते हैं, उसको परंपरा कहेंगे। मति ज्ञान के बिना शुद्ध ज्ञान नहीं होता, और मति ज्ञान होने पर भी यदि शुद्ध ज्ञान आवरण और वीर्यांतराय का क्षोभ सम न हो तो भी शुद्ध ज्ञान नहीं होता। देखो ये मति शुद्ध ज्ञान कौन से इंद्रिय वालों के होता है, सब एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी होता है, और पहले गुणस्थान से लेकर अरे बारहवें तक सबको शुद्ध ज्ञान है। केवल ज्ञान जब तक नहीं है तब तक मति शुद्ध ज्ञान तो डेफिनेटली है, अन्य उसके साथ और एडिशनल हो या ना हो उसकी बात अपने नहीं करनी, कहाँ कितने होते उसकी चर्चा नहीं करनी। तो यहाँ क्या कहा, मति ज्ञान तो हुआ परंतु शुद्ध ज्ञान और वीर्यांतराय का क्षोभ न हो तो शुद्ध ज्ञान नहीं होता। अब देखो एक इंद्रिय के पास मति ज्ञान तो है, किस संबंधी है, स्पर्शन इंद्रिय संबंध। अभी हम असंगी पंचेंद्रिय की बात करें, असंगी पंचेंद्रिय के पास पांचों इंद्रिय है, पांचों इंद्रियों के द्वारा तो उसको जानने की शक्ति है, मन नहीं है तो उसने भी सुना आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम सुना, या जो कोई उसने भी शक्कर सुना तो उसको वो शक्कर पदार्थ संबंधी कुछ हुआ क्या भाषण, नहीं हुआ, क्योंकि मन के द्वारा हम याद रखते हैं वो बताते हैं, जो कोई रिलेशन है हमारा उसके द्वारा वो तो आगे चलती है गाड़ी, तो उसके उस संबंधी उसका क्षोभसम नहीं था। या चतुर इंद्रिय जीव में अन्य कुछ बातें नहीं, अन्य इंद्रियों के द्वारा उसने देखी को, परंतु उसके विशिष्ट बातों का क्षोभसम है, उसके जो अपने उसकी कैपेसिटी वाला श्रुत ज्ञान उसके भी है, क्योंकि एक इंद्रिय सहित सबको मति ज्ञान भी है और श्रुत ज्ञान भी है, परंतु सबको सब कितना क्षोभसम होगा उतना उसका शुद्ध ज्ञान भी होगा। हमें भी मति शुद्ध ज्ञान है, हरेक के मति ज्ञान की और शुद्ध ज्ञान की कैपेसिटी उसकी कहो या पर्याय में जो प्रकटता है वो अलग अलग है ना, जिसको हम इंटेलिजेंट कहो IQ कहेंगे। तो ऐसा मति ज्ञान होने पर भी यदि शुद्ध ज्ञान आवरण और वीर्यांतराय का क्षोभसम न हो तो भी शुद्ध ज्ञान नहीं होता। यद्यपि शुद्ध ज्ञान पांचों इंद्रियों से उत्पन्न हुए मति ज्ञान पूर्वक होता है, तथापि क्योंकि पांचों इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान भी होता है, तो स्पर्शन इंद्रिय के बाद भी शुद्ध ज्ञान होगा। तथापि संगी पंचेंद्रिय जीव को होने वाले शुद्ध ज्ञान में शब्द योजना की विशेषता है, यानी मुख्यता है, कोई विशेषता है, क्योंकि इसको हम कहते हैं शब्द है वो वाचक है यानी बताने वाला है, क्योंकि हमने हर चीज का कोई ना कोई नाम रखा है, तो उसका नाम लेते हुए हमें वो शब्द ख्याल में आ जाता है, ज्ञान में आ जाता है। तो शब्द योजना होती है मुख्यतः। यह शास्त्रीय चिंतन शब्द को सुनकर चलता है, क्योंकि हमने पढ़े हैं शब्द या सुने हैं, तो हम उसको विचारों में उसको ले सकते हैं, उन शब्दों को याद करके शब्द का जो वाच्य पदार्थ है उसको लक्ष्य में ले सकते हैं। जैसे मेरी एक आत्मा ही शाश्वत है, ज्ञान और दर्शन उसका लक्षण है, शेष मेरे सब भाव बाह्य है। एक आता याद है क्या? एको में सांसद ज्ञान दर्शन लक्षण। एगो में सास दो गाता नंबर याद नहीं मिलेगी। मेरी एक आत्मा ही शाश्वत है, ज्ञान और दर्शन उसका लक्षण है, शेष मेरे भाव सब बाह्य है। ज्ञान दर्शन को छोड़कर शेष भाव है नहीं, वो सब राग आदि उसमें वो बाह्य भाव है जो कर्म संयोग से प्राप्त हुए हैं, जिसको हम औदयिक भाव कहेंगे। जीव ने जो दुख परंपरा प्राप्त की है उसका मूल यह संयोग ही है। कौन सा? कर्म संयोग से कहा ना। अतः समस्त संयोग संबंध को मन वचन काय से त्यागता हूँ, यानी मेरा कुछ है ही नहीं, त्यागता हूँ यानी अभी एक एक को बाहर निकालना है। इस आगम वचन को सुनने से, ये तो यहाँ एक गाथा बताइए, ये आगम वचन मन में जो आत्मोन्मुख विचारधारा चलती है, वस्तुतः वही सम्यक श्रुत है, उसी में साधु तत्पर रहते हैं। देखो ये हम शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वे विचारधारा आत्मोन्मुख होनी चाहिए। यहाँ पर शब्द का अर्थ प्रधान है, उससे यह अभिप्राय है कि श्रुत स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रुत परार्थ है। सर्वदा स्वार्थ श्रुत ज्ञान भावना में दत्त चित्त साधु भी, यानी उसमें जो दत्त चित्त ने उसमें उपयोग लगाए, उसमें कभी कभी अनादि वासना के वशीभूत होकर शब्दात्मक परार्थ श्रुत में भी लग जाते हैं। देखो परार्थिनी शब्द क्या बताते हैं, शब्द किसी अन्य अर्थ को बताते हैं, और ज्ञान तो अपने को ही जाहिर करता है। एक ज्ञानात्मक श्रुत ज्ञान को स्वार्थ कहते हैं और वचनात्मक को परार्थ कहते हैं। ये न्याय की भाषा। अरे हो गए, हम ये तीन वाक्य पढ़ रहे थे, फिर कल उसकी चर्चा करेंगे। परार्थ श्रुत ज्ञानी की अपेक्षा जो सुना जाए उसे श्रुत कहते हैं, अतः श्रुत का अर्थ शब्द होता है। शोभनीय श्रुत को सुश्रुत कहते हैं, सम्यक श्रुत वो सुश्रुत, अर्थात शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा का कथन और तद विषय पूछताछ आदि रूप से मुमुक्षुओं के लिए अभिमत जो श्रुत है वही सुश्रुत है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यानी सम्यक श्रुत जिसको हम कहेंगे भगवान की वाणी और उनकी परंपरा से आए हुए ग्रंथों की रचना। अब यही रुकेंगे।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।